नमस्कार भारत, 21 मार्च गुरुवार, मैं हूं मोहम्मद शाहिद। समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट मामले में अभियुक्तों की रिहाई पर पाकिस्तान ने जताई आपत्ति।
पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस में बुलाया गया इंडियन हाई कमिश्नर को और उनसे एक बाकायदा तौर पर प्रोटेस्ट किया गया और पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने बाद में इस पे एक स्टेटमेंट भी रिलीज किया जिसमें कंडेम किया गया फैसले को।
उधमपुर के सीआरपीएफ कैंप में एक जवान की फायरिंग में 3 की मौत। और आज होली के दिन आपको सुनवाएंगे राजस्थान के शेखावटी के गींदड़ नृत्य पर एक खास रिपोर्ट।
ये समाज की सामूहिकता को दिखाता है, एकता को दिखाता है। अपने उत्सवों को सामूहिक रूप से कैसे मनाएं बिना भेदभाव के, जाति के, ऊंच नीच के, इसको गींदड़ के रूप में प्रेजेंट करते हैं लोग।
लेकिन सबसे पहले सुनेंगे विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, दिनेश उप्रेती से। पाकिस्तान ने समझौता ब्लास्ट के अभियुक्तों की रिहाई पर सख्त विरोध जताया है। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा है कि धमाके के 11 साल बाद भी सभी अभियुक्तों का बरी हो जाना इस बात को साबित करता है कि भारतीय अदालतों की विश्वसनीयता कितनी कम है। समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट मामले में पंचकुला की स्पेशल एनआईए कोर्ट ने असीमानंद समेत 4 अभियुक्तों को बरी कर दिया है। असीमानंद के अलावा इस मामले में लोकेश शर्मा, कमल चौहान, राजेंद्र चौधरी भी अभियुक्त थे। इस मामले में कुल 8 अभियुक्त थे जिनमें से एक की मौत हो चुकी है जबकि 3 को भगोड़ा घोषित किया जा चुका है। ब्रिटानी प्रधानमंत्री टेरिजा मे ने ब्रेक्सिट डील पर संसद की मंजूरी नहीं मिलने के लिए सांसदों को कसूरवार ठहराया है। टेलीविजन पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि वह ब्रिटानी नागरिकों के साथ थी जो इस पूरी प्रक्रिया से थक चुके थे और इस डील से बाहर निकलना चाहते थे। समय सीमा के हिसाब से ब्रिटेन को यूरोपीय यूनियन से अगले 9 दिनों में अलग होना है, लेकिन टेरिजा मे ने समय सीमा में कुछ दिनों की बढ़ोतरी चाही है। ब्रिटानी प्रधानमंत्री ने सांसदों से अपील की है कि वो लोगों की इच्छा का सम्मान करें। अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने अर्थव्यवस्था में सुस्ती के संकेत दिए हैं। पॉलिसी पर समीक्षा बैठक के बाद फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पावेल ने संवाददाताओं से कहा कि अर्थव्यवस्था में अनुमान से अधिक धीमापन है। उन्होंने कहा, पिछले साल सितंबर में कमेटी के सदस्यों का अनुमान था कि इस साल अर्थव्यवस्था में 2.5% की दर से बढ़ोतरी होगी, लेकिन सितंबर के बाद से जो डेटा मिला है वो दिखाता है कि अर्थव्यवस्था में अनुमान से अधिक धीमापन है। चौथी तिमाही में वित्तीय हालात पेचीदा हुए हैं। हालांकि अब स्थितियों में कुछ सुधार हुआ है, लेकिन साल 2018 में अधिकांश समय तक स्थितियां अर्थव्यवस्था के प्रतिकूल रहीं। ये थे फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पावेल के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई बोइंग 737 मैक्स विमान हादसे की जाँच में सहयोग करेगी। इस मॉडल के 2 विमान पिछले 5 महीनों में दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। इन विमान हादसों में विमान में सवार सभी लोगों की मौत हो गई थी। इथियोपियन एयरलाइंस की विमान दुर्घटना में जांच हालांकि इथियोपियन प्रशासन ही कर रहा है, लेकिन एफबीआई ये देखेगी कि किस तरह विमान को सुरक्षा सर्टिफिकेट जारी किया गया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने वेनेजुएला में सुरक्षा बलों की प्रदर्शनकारियों के खिलाफ उनकी दमनकारी कार्रवाई के लिए निंदा की है। आयोग ने कहा है कि पिछले साल सुरक्षा बलों की कार्रवाई में करीब 205 लोगों की मौत हुई है। यूरोपीय संघ प्रतिस्पर्धा आयोग ने गूगल पर प्रतिस्पर्धी ऑनलाइन सर्च विज्ञापनों को ब्लॉक करने पर 149 करोड़ यूरो यानी लगभग 11,760 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। गूगल पर यह जुर्माना ऑनलाइन विज्ञापन में अपनी मजबूत स्थिति के दुरुपयोग को लेकर लगाया गया है। यह तीसरा मौका है जब आयोग ने 2 साल के भीतर गूगल पर प्रतिस्पर्धा नियमों के उल्लंघन को लेकर जुर्माना लगाया है। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट विज्ञापन में अरबों डॉलर की आय करती है और साल 2018 में विज्ञापन से इसका टैक्स पूर्व मुनाफा 3,070 करोड़ डॉलर रहा था। बीबीसी समाचार।
नमस्कार स्वीकार करें मोहम्मद शाहिद का। ये बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत है। इस कार्यक्रम को रेडियो के साथ साथ आप हमारी वेबसाइट bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट मामले में कल पंचकुला की स्पेशल एनआईए कोर्ट ने असीमानंद समेत चारों अभियुक्तों को बरी कर दिया। भारत पाकिस्तान के बीच चलने वाली समझौता एक्सप्रेस ट्रेन में साल 2007 में धमाके हुए थे जिनमें 68 लोगों की मौत हुई थी। इनमें से 44 लोग पाकिस्तान के नागरिक थे। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भारतीय कोर्ट के इस फैसले पर कड़े शब्दों में नाराजगी जताई है। पाकिस्तान के कार्यवाहक विदेश सचिव ने भारतीय उच्चायुक्त को तलब कर आपत्ति दर्ज कराई और कहा कि 11 साल बाद इस धमाके के मामले में फैसला आया है जो 44 पाकिस्तानी परिवारों के लिए असंवेदनशील है। पूरा मामला जानने के लिए बीबीसी संवाददाता मानसी दास ने बात की इस्लामाबाद में मौजूद बीबीसी संवाददाता शुमाइला जाफरी से।
जी बिल्कुल, ये फैसला आया है आफ्टरनून में, तो उसके बाद पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस में बुलाया गया इंडियन हाई कमिश्नर को और उनसे एक बाकायदा तौर पर प्रोटेस्ट किया गया। और पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने बाद में इस पे एक स्टेटमेंट भी रिलीज किया जिसमें कंडेम किया गया फैसले को पाकिस्तान की सरकार की तरफ से, और ये कहा गया कि पाकिस्तान की सरकार बार बार इंडिया को पिन पॉइंट करती रही जबकि इस जो केस है इस पे प्रोग्रेस बहुत अच्छी नहीं रही और 11 साल लगे हैं इसका फैसला होने में। और उनका कहना था कि इसमें 44 पाकिस्तानियों की जान गई थी और पाकिस्तान ये मुद्दा बार बार उठा रहा था, और लेकिन इंडिया में जो मुलजिम थे इस केस के उनको दूसरे मुकदमों में बरी किया गया। 11 साल से जो था या पाकिस्तान में लोग जो थे फैमिली सी वो इंसाफ का इंतजार कर रही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि आज जो फैसला आया है वो एक तरह से इंसाफ से मजाक किया गया है और ये एक इंडियन कोर्ट्स की शैम क्रेडिबिलिटी को जाहिर करता है। और ये भी कहा गया कि ये इंडिया की हिपोक्रेसी है कि वो पाकिस्तान पे खुद तो टेररिज्म का इल्ज़ाम लगाता है लेकिन फैसले ने ये एक्सपोज किया है इंडिया को कि वो जो है वो क्रिमिनल्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, वो क्रिमिनल्स जो कि पब्लिकली अपने जुर्म का एतराफ करते रहे हैं। ये भी कहा गया स्टेटमेंट में कि इस फैसले से जो एक इंडिया की स्टेट पॉलिसी है, लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया हिंदू टेररिज्म को प्रमोट करने की, वो जाहिर होती है। और ये डिमांड किया गया कि कानूनी तरीके से जो इंडिया है वो समझौता ब्लास्ट के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में पहुंचाए।
क्या इसे लेकर पाकिस्तान अब और आगे बढ़ने की या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने की के बारे में भी सोच रहा है?
देखिए, अभी तो इस बारे में कोई इस तरह का पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं दिया गया। पाकिस्तान जो है वो जाहिर है इस चीज को देखेगा कि क्या उसके पास ऑप्शंस हैं, क्या किया जा सकता है क्या नहीं किया जा सकता, लेकिन अभी फिलहाल तक इस बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। हुकूमत की तरफ से ऐसा कोई भी जेस्चर नहीं दिया गया जिससे इस हवाले से कोई फ्यूचर पॉलिसी के बारे में डायरेक्शन पता चल सके कि क्या करने का इरादा रखती है पाकिस्तान की सरकार। लेकिन अगर आप एनालाइज करें तो पिछले बहुत दिनों से जब से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये जो रीसेंट कॉन्फ्रेंटेशन शुरू हुई है तो ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत एक्सेप्शन है। इसमें बहुत ज्यादा सख्त अल्फाज जो है वो इस्तेमाल किए गए हैं और एक बहुत ही डिप्लोमेटिक टर्म्स में अगर देखा जाए तो ये एक बहुत ही सख्त किस्म का एक तरह स्टेटमेंट है जो पाकिस्तान की तरफ से आया।
समझौता एक्सप्रेस ट्रेन धमाका मामले में आरोपियों के बरी होने पर पाकिस्तान ने जताई आपत्ति। अधिक जानकारी दे रही थी शुमाइला जाफरी। श्रोताओं बढ़ते हैं आगे। देर रात उधमपुर के बट्टल बल्लियां के सीआरपीएफ कैंप में एक जवान द्वारा की गई गोलीबारी में 3 सीआरपीएफ जवानों की मौत हो गई। शुरुआती जांच से पता चला है कि जवानों के बीच आपसी कहासुनी के बाद ये घटना हुई है। सुनिए जम्मू से मोहित कंधारी की ये रिपोर्ट।
जम्मू से लगभग 55 किलोमीटर दूर जिला उधमपुर में सीआरपीएफ के एक कैंप में बुधवार देर शाम हुई एक गोलीबारी की घटना में 3 जवानों की मृत्यु हो गई जबकि अपने ही साथियों पर गोलियां बरसाने वाला एक और जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। ये घटना सीआरपीएफ की 187वीं वाहिनी के बट्टल बालियां स्थित कैंप के अंदर रात 10 बजे के आसपास हुई। प्राथमिक जानकारी के अनुसार कैंप में मौजूद सीआरपीएफ जवानों के बीच आपसी कहासुनी के मामले ने अचानक इतना तूल पकड़ लिया कि वहां मौजूद एक जवान ने अपने हथियार से साथी जवानों पर गुस्से में अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग की घटना में 3 जवानों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। 187वीं वाहिनी के कमांडिंग ऑफिसर हरिंदर कुमार ने पत्रकारों से उधमपुर में कहा, देर शाम कैंप के अंदर हुई फायरिंग की घटना में 3 जवान मारे गए हैं और चौथा जिसने फायरिंग की वो गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।
वो इसमें अभी आपने देखा है उनकी डेथ हो गई है
जी है।
और जो चौथा जिसने गोली मारी है वो भी अभी जूझ रहा है,
यानी कि तो आपसी रंजिश के साथ कोई मतलब
नहीं, नहीं, कोई हमला नहीं है, नहीं है।
हाँ,
जिसने मारा है
आतंकी हमला नहीं है,
नहीं नहीं आतंकी।
इस घटना में हवलदार पोखरमल, हवलदार योगेंद्र और हवलदार उम्मीद सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। गोलीबारी करने के बाद हमलावर सिपाही अजीत कुमार ने खुद को भी अपनी ही बंदूक से गोली मार ली। उसे उधमपुर के आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। स्थानीय पुलिस ने सीआरपीएफ जवानों के शव अस्पताल के शव गृह में रखवा दिए हैं और मामले की तह तक जाने के लिए अपने तौर पर घटना की जाँच शुरू कर दी है। मोहित कंधारी, BBC जम्मू।
रुख करते हैं राजनीतिक खबर का। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने कल घोषणा की कि वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी, यानी वो उत्तर प्रदेश से सपा बसपा गठबंधन की उम्मीदवार नहीं होंगी। सुनते हैं कि बसपा प्रमुख मायावती ने क्या कहा।
वर्तमान हालात को देखकर अगर चुनाव बाद मौका आएगा तो मैं जिस सीट से चाहूंगी तो उस सीट को खाली कराकर लोकसभा की सांसद बन सकती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं जाएगी। इसलिए देश के वर्तमान हालात में जरूरत को देखते हुए तथा अपनी पार्टी की मूवमेंट के व्यापक हित के साथ साथ जनहित व देश हित का भी यही तकाजा है कि मैं लोकसभा का चुनाव अभी नहीं लड़ूं।
उत्तर प्रदेश समेत कई इलाकों में एक खास वर्ग है जो मायावती को अपने नेता के रूप में देखता है और उन्हें वोट करना चाहता है। ऐसे में मायावती के इस फैसले से इस वर्ग में क्या संदेश जाता है और क्या ऐसा करके वो कांग्रेस और बीजेपी के लिए एक चुनावी प्रतियोगिता को कम तो नहीं कर रही हैं? हमारी सहयोगी मानसी दास ने इन्हीं सारे सवालों के जवाब पाने के लिए बात की उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान से।
उनको मायावती इसी तरीके से कन्विंस करती हैं ये कह करके कि अगर मैं चुनाव लड़ूंगी तो मैं एक जगह जो है मुझे टाइम ज्यादा स्पेंड करना पड़ेगा कि मेरी वजह से जो लोग मेरी पार्टी के वर्कर्स हैं वो इस कदर जुट जाएंगे मेरे ही इलेक्शन में कि बाकी जगहों का नुकसान हो जाएगा, तो इसलिए ये जस्टिफिकेशन दे रही है। लेकिन हकीकत जो है वो कुछ और ही है। मुझे जो लगता है वो ये कि मायावती को अंदर अंदर जो है अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, 2004 से तो उन्होंने कोई इलेक्शन लड़ा ही नहीं है, हमेशा बैकडोर एंट्री करी है इनटू विधान परिषद या राज्यसभा। नतीजा ये है कि इसमें तो जीतना मुश्किल होता ही नहीं है, उनको इजी इलेक्शन की आदत हो गई है जहाँ बिना रिस्क के उनको अश्योर्ड विक्ट्री हो, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर मैं हार गई तो फिर तो पार्टी वैसे ही बुरी हालत में है। 2014 में एक भी सीट नहीं मिली थी, बिटवीन 2012 और 17 में इतनी ज्यादा गिरावट आई, 87 या 86 सीट थी विधानसभा में 2012 में, और 17 में रिड्यूस हो गई 19 सीट पे, तो ओवरऑल बहुत गिरावट आ गई। ये ठीक है उनका वोट परसेंटेज बरकरार है, 19-20 पे लटका रहता है, लेकिन उसमें ऐड नहीं होता कुछ, इसलिए मायावती अंदर अंदर घबराती हैं। और आजकल का जो इस वक्त जो माहौल है, बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है पुलवामा और बालाकोट को एक्सप्लॉइट करने की अपने इलेक्टोरल बेनिफिट के लिए, इसमें और घबराई हुई है क्योंकि उससे माहौल तो क्रिएट हो ही गया है, तो इस वजह से इस रिस्क को मायावती लेने को तैयार नहीं है, प्रिपेयर नहीं है। तो 2004 से आपको मैं बताऊं, 2004 के बाद उन्होंने कोई भी ना विधानसभा का इलेक्शन लड़ा है ना लोकसभा का लड़ा।
लेकिन जब SP-BSP अलायंस हुआ तो उसमें काफी हद तक लोगों को यही संदेश देने की कोशिश की गई कि बहन जी लौट रही हैं।
हाँ हाँ बिल्कुल, नहीं अब टाइम में और अभी में काफी फर्क हो गया माहौल में। वैसे तो उस टाइम पे माहौल डिफरेंट था, जब ये दोनों एक साथ आए थे तब वो कास्ट एलिमेंट काउंट करता था पूरा का, और कास्ट कॉन्फ़िगरेशन टोटली उनके फेवर में था। एसपी और बीएसपी के जो अरिथमेटिक वो बड़ी सिंपल सी थी कि इतने परसेंट ये इतने परसेंट ये, फिर ये माहौल चेंज हुआ बालाकोट के बाद, और वैसे तो कोई भी गवर्नमेंट होती है उसको बेनिफिट मिलता इस चीज का, लेकिन बीजेपी ने भरपूर प्रयास करके उस बेनिफिट को इतना बढ़ावा दिया, एक नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को इतना बढ़ावा दिया, ऐसा प्रतीत होता है अभी कि माहौल बहुत ज्यादा इनडायरेक्टली वो इनके फेवर में चला गया है मोदी के, और ये सर्वाइवल का टाइम है, क्योंकि अगर अगर इस इलेक्शन दोनों जने साथ ही इसलिए आए और अगर इस बार सर्वाइव नहीं किए तो बड़ा मुश्किल हो जाए
जी। लेकिन
उन्होंने अलग रखा है,
मैं अभी इसी बात पर आ रही थी कि उन्होंने जैसे एसपी बीएसपी ने कांग्रेस को दूर रखा है और अब अगर मायावती इलेक्शंस पे खड़ी नहीं होती तो क्या वो एक तरह से कांग्रेस के लिए भी आगे का रास्ता साफ कर रही हैं? बीजेपी के लिए तो हर रास्ता उन्होंने साफ कर ही दिया है।
इंटेंशन ऐसा नहीं है कोई भी कि कांग्रेस के लिए रास्ता साफ कर रहे, लेकिन वो तो उनका तो उनकी तो प्रॉब्लम इतनी ज्यादा है मायावती की, नहीं तो ये नौबत ही नहीं आती। मायावती ने ये कह करके कांग्रेस से जो है हाथ मिलाने को राजी नहीं हुई कि साहब हमें आपने छत्तीसगढ़ राजस्थान और मध्य प्रदेश में जितनी हम सीटें चाहते थे नहीं दी, तो कोई हिसाब नहीं है, सब अपने अपने दिन में है और इन इन झगड़ों का फायदा जो है वो इनडायरेक्टली बीजेपी को मिल जाएगा। कांग्रेस को बाय डिफॉल्ट मिल जाए, जैसे 2009 में हुआ था कि वोट चला जाए बाय डिफॉल्ट, क्योंकि लोग इतने अगर नाराज हैं कि साहब किसी को भी दे देंगे उनको नहीं देंगे, तो ऐसी अगर स्थिति होती है तो कांग्रेस को की वही चलता कि ठीक है चलो ये तो बहुत जमाने से बाहर है चलो इन्हीं को दे देते हैं, लेकिन हाँ वक्त बाकी है।
मायावती नहीं लड़ेंगी लोकसभा चुनाव, अधिक जानकारी दे रहे थे वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान। अब रुख करते हैं दक्षिण भारत का। केरल के मसाले पूरे विश्व में अपना अलग स्थान रखते हैं। ये भी कहा जाता है कि केरल ने ही लोगों की थालियों तक मसाले भी पहुंचाए और उन्हें मसालों के इस्तेमाल का तरीका भी सिखाया। केरल से मसालों का निर्यात 2000 साल पहले शुरू हो गया था जब व्यापारियों की कश्तियां अरब सागर के तट के किनारे बसे इस प्रदेश तक पहुंची। लेकिन आजकल केरल की हवाओं में राजनीतिक हिंसा का मसाला भी घुलने लगा है। केरल से मसालों के सफर पर बीबीसी संवाददाता सलमान रावी की ये रिपोर्ट।
भगवान का अपना देश कहे जाने वाले केरल के व्यंजन भी दिव्यता का एहसास कराते हैं और यहाँ के थालासेरी की बिरयानी अपने आप में एक ब्रांड बन चुकी है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारे मसाले डाले जाते हैं और इसको बनाने का तरीका भी बिल्कुल अलग है। केरल से मसालों का व्यापार 2000 साल पहले ही शुरू हो गया था। देश के पश्चिमी तट पर स्थित इस इलाके में सबसे पहले अरब और यूरोपीय देश के व्यापारियों के जहाजों के आने की बात कही गई है। केरल के जाने माने इतिहासकार कुट्टी हसन कहते हैं,
सेवन लॉर्ड हेडलॉट रोमन गोल्ड कॉइंस।
वर्ष 1851 में कोट्टयम बाजार से प्राचीन रोम काल के सोने के सिक्के से भरे 7 बोरे बरामद किए गए थे। ये बात रिकॉर्ड में दर्ज है। इसका मतलब है कि पहली शताब्दी में ही यहाँ से मसालों का व्यापार शुरू हो गया था।
लेकिन केरल की फिजा में अब राजनीतिक हिंसा का मसाला भी घुल रहा है। इस हिंसा के आरोपों से केरल के किसी भी राजनीतिक दल या गठबंधन का दामन अछूता नहीं है। हालांकि सीपीएम के नेता सीजे चाको का दावा है कि अब इस हिंसा में काफी कमी आई है।
अभी राजनीतिक हत्याएं कम हुई हैं, ये बढ़ नहीं रही हैं। सरकार आरोपियों के खिलाफ सख्ती से काम कर रही है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल में क्यों ना हो।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाको के दावों को खारिज करती है। पार्टी की युवा इकाई के नेता कृष्ण कुमार ने सीपीएम पर ही हिंसा फैलाने का आरोप लगाया।
मौजूदा सरकार के पिछले 1100 दिनों के शासनकाल में 20 राजनीतिक हत्याएं हुई हैं। 16 मामलों में सीपीएम के कार्यकर्ता अभियुक्त हैं। पिछले सप्ताह हमारे जिले में सीपीएम की युवा इकाई के लोगों ने अस्पताल पर ही हमला कर दिया था।
जहां लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट गठबंधन के पिछले 3 सालों के शासनकाल में 20 राजनीतिक हत्याएं दर्ज की गई हैं, वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के शासनकाल में यह आंकड़ा 36 था। मगर इस राजनीतिक रस्साकशी के बीच केरल में मसालों की खेती करने वाले किसानों को भी संघर्ष करना पड़ रहा है। थॉमस ऐसे ही एक युवा किसान है।
I don't think we have a slab like that. We have a fixed price like that. Because
मुझे नहीं लगता कि मसालों पर सरकार ने कोई न्यूनतम समर्थन मूल्य कभी रखा हो। 2 साल पहले काली मिर्च का मूल्य 700 रुपए प्रति किलो था, उत्पादन का मूल्य भी उतना ही था। अब काली मिर्च की कीमत 350 रुपए प्रति किलो है, जबकि उसको पैदा करने की लागत जस की तस है। बाजार की तुलना में ये बहुत कम है।
थॉमस की तरह ही अमल भी अब मसालों की खेती को घाटे का सौदा बताते हैं।
अब किसान मसालों की खेती छोड़ रहे हैं। यहाँ पर लोग पढ़े लिखे हैं और अब वो नौकरी करना ही ज्यादा पसंद कर रहे हैं। मसालों की खेती अब लाभदायक नहीं रही।
मगर किसानों के दावों के ठीक उलट सरकारी अधिकारी कहते हैं कि मसालों की खेती से किसानों को फायदा हो रहा है। सरकार के ही स्पाइस बोर्ड के सदस्य एके विजयन का दावा है,
आवर क्वालिटी स्पाइसेस, इंडियन स्पाइसेस आर सुपर इन क्वालिटी, सो इन द डोमेस्टिक मार्केट,
गुणवत्ता के लिहाज से पूरे विश्व में हमारे मसाले सबसे उत्तम हैं, इसलिए यहाँ से निर्यात की मांग बढ़ रही है। इलायची का उत्पादन मूल्य लगभग 400 रुपए प्रति किलो है, जबकि किसान को उससे 1000 रुपए प्रति किलो मिल रहा है। मसालों की खेती वैसे लाभदायक है।
केरल की जमीन और मौसम मसालों की खेती के लिए काफी अनुकूल रहे हैं, यही वजह रही कि यहाँ से मसाले दुनिया के कोने कोने तक पहुँचे। मगर हवाओं में घुल रहे राजनीतिक जहर ने यहाँ के मसालों के स्वाद को बदमजा करना शुरू कर दिया है। सलमान रावी, BBC केरल।
केरल के बाद आते हैं अब दिल्ली, जान लेते हैं दिल्ली से छपने वाले अखबारों में आज क्या कुछ खास है। अखबारों के साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दिनेश उप्रेती
जी। शाहिद, पंजाब नेशनल बैंक में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक के घोटाले के अभियुक्त नीरव मोदी को लंदन में गिरफ्तार किए जाने और 29 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की खबर लगभग सारे अखबारों के पहले पन्ने पर है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक हीरा कारोबारी नीरव मोदी ने जमानत के लिए 5 लाख पाउंड यानी 4.5 करोड़ रुपये से अधिक की राशि की पेशकश की थी। हिंदुस्तान टाइम्स की हेडलाइन है, नीरव मोदी अरेस्टेड, यूके कोर्ट रिजेक्ट्स बेल। समझौता एक्सप्रेस में विस्फोट मामले में चारों अभियुक्तों को बरी किए जाने की खबर भी तकरीबन सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। इंडियन एक्सप्रेस की सुर्खी है, ऑल फोर वॉक्स फ्री इन समझौता एक्सप्रेस अटैक दैट किल्ड 68। हिंदुस्तान टाइम्स की हेडलाइन है, असीमानंद एक्विटेड इन समझौता ब्लास्ट केस। हिंदुस्तान ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के उस बयान को पहले पन्ने पर जगह दी है जिसमें उन्होंने भाजपा सरकार पर देश की संस्थाओं को बर्बाद किए जाने का आरोप लगाया है। प्रियंका ने उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में कहा कि प्रधानमंत्री को यह सोचना छोड़ देना चाहिए कि लोग बेवकूफ़ हैं, लोग अब समझ रहे हैं।
दिनेश जी, बुरा ना मानो होली है, मतलब आप समझ नहीं रहे होंगे कि आज अखबारों में ये चीज़ आज हर जगह दिखाई देगी
जी, खासकर हिंदी अखबारों में तो ये पहले पन्ने इसी बात से रंगे हुए हैं।
ट्रेंड रहता है हर होली के दिन,
हर होली में रहता है
जी।
जैसे मैं नवभारत टाइम्स की आपको हेडलाइन बता दूं कि पाकिस्तान ने हाफिज सईद को भारत के हवाले किया, अब दाऊद की बारी।
तो मतलब ये इस तरीके की खबरें जो है चुटीले दे दी जाती हैं, जैसे पंजाब केसरी पे मैं देख रहा हूँ उस पर लिखा हुआ है, चौकीदार हुए मालदार। मित्रों, कल सब अपने अपने खाते चेक कर लेना, सभी के खाते में 15-15 लाख पहुंच चुके हैं
जी।
मतलब होली के दिन इस तरीके की खबरें जो फर्जी खबरें हैं लेकिन वो चुटीले अंदाज में डाल दी जाती हैं और कह दिया जाता है कि बुरा ना मानो होली है। तो दिनेश जी, होली आपको भी शुभकामनाएं बहुत बहुत,
और आपको भी बहुत बहुत
जी। और होली की ही खबर पर आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के शेखावटी अंचल में गांव कस्बे इन दिनों गींदड़ नृत्य के पैरों की थिरकन और संगीत की सुर लहरी से गूंज रहे हैं। इसका आयोजन होली के मौके पर किया जाता है। गींदड़ ने हाल के वर्षों में अपना दायरा बढ़ा लिया है और अब ये देश के उन भागों तक पहुँचा है जहाँ मारवाड़ी आबाद हैं। क्या है ये गींदड़ नृत्य, सुनिए जयपुर से हमारे सहयोगी नारायण बारेट की एक खास रिपोर्ट।
सांझ ढले जब होली के रसिए चंग ढोल और डफ की थाप पर थिरकने लगते हैं, मरुस्थल का कैनवास संगीत के रंगों से सरोबार हो जाता है। शेखावाटी वो इलाका है जिसने भारत को उद्योग जगत की नामचीन हस्तियां दी है, तो सेना में शौर्य दिखाने वाले योद्धा भी। वक्त ने करवट ली तो गींदड़ एक बार लड़खड़ाया, लेकिन फिर ऐसे उठा कि थिरकते हुए पैर गुवाहाटी और कलकत्ता तक जा पहुंचे। गींदड़ नृत्य के आयोजकों में से एक JP मिश्रा कहते हैं,
ये पहले शेखावाटी में ही बसता था, ये धीरे धीरे गायब भी हो गया था, तब से धीरे 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 ही आगे बढ़ा है। तो अब तो 15-20 साल से धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, जैसे आप बॉम्बे जाओ, कलकत्ता जाओ, सब जगह होने लगा है। एक बार धीरे धीरे खत्म हुआ था, फिर दोबारा सबने ही कहा, बॉम्बे वालों को भी कहा, गुजरात वालों को, सबको हमने कहा भाई अपने शुरू करना चाहिए, तो हमने यहाँ शुरू कराया, उन्होंने भी सब जगह अपना शुरू कर दिया।
गींदड़ एकाकीपन के सन्नाटे को तोड़ता है और इंसानियत में सामूहिकता के भाव भर देता है। यूं तो जीवन के हर हिस्से में स्वांग है, फिर चाहे वो सियासत हो या धर्म आस्था, लेकिन ये मौका होता है जब लोग भिन्न भिन्न तरह के स्वांग रचकर इस पर प्रहार भी करते हैं। लोक संस्कृति के जानकार विनोद जोशी इसका बखान करते हैं,
ये समाज की सामूहिकता को दिखाता है। एकता को दिखाता है, अपने उत्सवों को सामूहिक रूप से कैसे मनाएं बिना भेदभाव के, जाति के, ऊंच नीच के, और कैसे वो एक संगठित रूप से एक आयोजन उत्सव का भाग बन जाए, इसको गिंदड़ के रूप में प्रेजेंट करते हैं लोग। गिंदड़ सारी रात चलता है, इसमें गीत होता है, इसमें नगाड़े बजाए जाते हैं, इसमें ढोल बजाए जाते हैं, इसमें तरह तरह के स्वांग होते हैं, स्वांग सटायर भी हैं, वो राजनीतिक हो सकते हैं, हमारे धार्मिक जो आजकल दोगलापन दिखता है, जीवन के व्यवहारिक पक्ष में जो दोगलापन दिखता है, कोई सेठ है, कोई मुनीम है, कोई कंजूस व्यक्ति है, कोई स्पेशल करेक्टर है, जीवन जो बहरता है, चलता है, वो ही हम अपने जीवन के उत्सवों में दिखाएं, ये गिंदड़ है सर।
उम्र दराज शंकर टाक कहते हैं, इस नृत्य में भागीदारी से इंसान की उम्र बढ़ जाती है।
फागुन का महीना होता है ना, वो मस्त महीना होता है, क्योंकि इसमें ऋतुराज बसंत का मिश्रण होता है। ऋतुराज बसंत है, ऋतु शिशिर है, ये दो तीन ऋतु मिलकर इसको मादकता प्रदान करती है। और धमाल जब होती है तो बैठा बैठा आदमी नाचने लगा, ऐसा रिदम बनता है इसका। फागुन में जो नाचता है उसकी एक साल उम्र बढ़ जाती है।
नृत्य आयोजन से जुड़े नगेंद्र राठौड़ कहते हैं, तकनीक और सुविधाओं ने इसके पंख लगा दिए हैं।
पहले के मुकाबले मॉडर्नाइजेशन हो गया है। पहले गांवों में, ढाणियों में चौपाल हुआ करती थी, मैदान हुआ करते थे, उनमें रात रात भर चंग पे गिनट का प्रोग्राम चलता था। अब समय के अनुसार परिवर्तन आया है, अच्छे प्लेसेज पे ऑर्गेनाइज, वेल ऑर्गेनाइज भी होने लग गया। पहले कोई एक कोस दो कोस से आवाज सुनता था तो वहाँ गिनट हो रही है, वहाँ ढप बज रहा है, तो वहाँ चला जाता था।
गिंदड़ महज दिल बहलाव नहीं है, सियासत का कोई हिस्सा जब इंसानियत को जाति धर्म में बांटने लगता है, यह नृत्य सौहार्द का पैगाम लेकर आता है। इस नृत्य में स्वांग कर रहे सतीश चौहान इसका सबब यूं बयान करते हैं।
हमारे गांव में जो मुस्लिम समुदाय है वो हिंदू बनते हैं, हिंदू का रोल निभाते हैं इसके अंदर, साफा पगड़ी तिलक लगा के, और जो हिंदू हैं वो मुस्लिम का रोल निभाते हैं, बुरखा लगा के और टोपी पहन कर अपने लोक संस्कृति को आगे बढ़ावा देते हैं। एकदम समाज को एक अच्छा संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग भाईचारे की तरह एकदम भाई भाई हैं। हमारे गांव के अंदर हम लोग इस संस्कृति को बहुत अच्छा बढ़ावा देना चाहते हैं। जो हमारे गाँव के जो लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, वो बहुत ही अच्छा सपोर्ट करते हैं, हम लोग भी उनका बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं।
चांदनी रात में नृत्य करते स्वांग भरे किरदारों की हर कोई तारीफ करता है, लेकिन लौटते हुए ये जरूर पूछने लगता है कि ये स्वांग है तो फिर वे कौन लोग हैं जो ऊंचे सभा मंडपों पर काबिज मिलते हैं। नारायण बारेठ, BBC, जयपुर।
और अब समय है खेल समाचारों का।
खेल समाचारों के साथ मैं इंदु पांडे। एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता अमित पंघाल 52 किलो वर्ग में पदार्पण करेंगे, जबकि शिवा थापा 60 किलो की नजरें रिकॉर्ड लगातार चौथे पदक पर होंगे उनकी। दोनों को अगले महीने होने वाले एशियाई चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में जगह दी गई है। एशियाई चैंपियनशिप बैंकॉक में 19 से 28 अप्रैल तक होगी। अमित पंघाल ने बुल्गारिया में पिछले महीने स्ट्रांजा मेमोरियल टूर्नामेंट में 49 किलो वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। BBC से खास बातचीत में उन्होंने यही कहा कि बॉक्सिंग एक ऐसा खेल है जिसमें कोच काफी महत्वपूर्ण होता है।
जी, बॉक्सिंग में ये होता है कि बिना पार्टनर के कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये इंडिविजुअल गेम है और पार्टनर हमें चाहिए ही चाहिए है। तो एक कोच एक साथ में पार्टनर भी बन सकता है, कोच भी बन सकता है, और अगर बाद में बच्चे को जैसे ज्यादा प्रैक्टिस, कभी कभी इतनी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाती है कि हिम्मत नहीं रहती है।
और अब करते हैं बैडमिंटन का रुख। महान बैडमिंटन खिलाड़ी ली चोंग वेई ने कैंसर से उबरने के बावजूद अगले महीने होने वाले मलेशिया ओपन से नाम अपना वापस ले लिया है, जिससे टोक्यो ओलंपिक 2020 में उनकी भागीदारी खटाई में पड़ सकती है। ली को डॉक्टरों ने आराम करने की सलाह दी है।
और अब चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर दिनेश उप्रेती से।
BBC समाचार। पाकिस्तान ने समझौता ब्लास्ट के अभियुक्तों की रिहाई पर सख्त विरोध जताया है। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा है कि धमाके के 11 साल बाद भी सभी अभियुक्तों का बरी हो जाना इस बात को साबित करता है कि भारतीय अदालतों की विश्वसनीयता कितनी कम है। ब्रितानी प्रधानमंत्री टेरेजा मे ने ब्रेक्सिट डील पर सांसदों की मंजूरी नहीं मिलने के लिए सांसदों को कसूरवार ठहराया है। अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने अर्थव्यवस्था में सुस्ती के संकेत दिए हैं। अमेरिकी जांच एजेंसी FBI बोइंग 737 मैक्स विमान हादसे की जांच में सहयोग करेगी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने वेनेजुएला के सुरक्षा बलों की प्रदर्शनकारियों के खिलाफ उनकी दमनकारी कार्रवाई के लिए निंदा की है। यूरोपीय संघ प्रतिस्पर्धा आयोग ने गूगल पर प्रतिस्पर्धी ऑनलाइन सर्च विज्ञापनदाताओं को ब्लॉक करने पर 149 करोड़ यूरो यानी लगभग 11,760 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, भारत में आज इतना ही। स्टूडियो का तकनीकी पक्ष संभाला तिलक राज भाटिया ने। आपसे अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी। तब तक आपके साथ है हमारी मल्टीमीडिया वेबसाइट bbchindi.com। मोहम्मद शाहिद को सभी साथियों के साथ दें अनुमति। नमस्कार।